ये नहीं है कि कोई भी एक से दूसरा ऊंचा हो गया, ये मुझे गवाही का हक मिल गया तो मैं बहुत ऊंचा हो गया, और इसको जो है ना एक गवाही का मिला हुआ तो इसलिए नीचे हो गए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि गवाही देना क्या कोई इनाम है या कोई जिम्मेदारी है, ये पहले बताएं। है कोई जिम्मेदारी है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इनाम नहीं है कि उनको मिल गया हमें नहीं मिला। अगर ये कोई इनाम होता तो औरतें कह सकती थी कि भाई हमारा हक कम कर दिया गया। हालांकि आप देखें कोर्ट में जाके जो जो दूसरी जो दूसरा मुखालिफ फरीक होता है उसके खिलाफ गवाही देना, उसकी दुश्मनी मोल लेना, ये तो एक मुसीबत है। बाज दफा गवाही देने के लिए एक से शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, सफर की मुश्किल उठानी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए औरत को इस चीजों से बरी रखा। अब जहां पे, हाँ एक बात समझ ले, और जहां पे ऐसे मामला हैं जिनमें औरत ही उन मामला को जानती है, वहां पे एक औरत की गवाही काफी है, उसमें मर्द की गवाही की जरूरत ही नहीं, यानी मर्द की गवाही को नहीं माना जाता। बात समझ आ रही है या नहीं? मर्द की गवाही वहां पे नहीं मानी जाती उन मामलात में जो औरत से ही कंसर्न है। मिसाल के तौर पे ऐसे मामलात जो पीरियड से मुतल्लिक है, ऐसे मामलात के जैसे मसलन कोई दूध पिलाने से मुतल्लिक है या बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक है, ऐसे मामलात में मर्द की गवाही नहीं मानी जाएगी, और एक औरत की गवाही काफी। अगर औरत इस्लाम के नजदीक कोई बहुत ही कमतर चीज होती तो फिर औरत की गवाही को काफी क्यों करार दिया गया? आप एक इसकी मिसाल देखें, बुखारी में यह हदीस आती है कि उकबा बिन हारिस जो थे वो बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से शादी की और एक और औरत ने कहा, एक और औरत थी कोई, उसने कहा कि मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया हुआ। जाई, मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दोनों तो रजाई बहन भाई हो। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके ये वाक्य अर्ज किया, आपने फरमाया तुम उस औरत को अब निकाह में किस तरह रख सकते हो जबकि ये गवाही आ चुकी है उस औरत को तलाक दे दो, क्योंकि वो उनकी रजाई बहन बन गई ना। फिर तो अब यहां पे देखें एक औरत ने गवाही दी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, तो अब ये नहीं कहा गया नहीं किसी मर्द की गवाही लेकर आओ, तुम्हारी क्या आधी गवाही है, नहीं, ऐसी चीज के अंदर एक औरत की ही गवाही काफी है। तो इस तरह के मामलात के अंदर फिर औरत की गवाही कोई मोतबिर समझा जाएगा। इसी तरह जहां पे सिर्फ औरतें हों, जहां पे ये चीजें हों, यहाँ पे हाँ जो किसास के मामलात हैं, हदूद के मामलात हैं, उसमें जाहिर सी बात है इन चीजों को रखा जाए तो औरतों के लिए कि मुश्किल हो जाएगी गवाही देना, माली मामलात है। लेकिन हमें शायद औरतों को ये शौक है कि नहीं अगर मर्द कोई चीज कर रहे हैं तो हमने भी जब तक उनके बराबर होके ना की तो तब तक हम कुछ काबिल नहीं है। तो अगर मर्द भी ये कहें कि इन मामलात में औरतों की सुनी जाएगी, वो सहाबी अगर कह देते कि इसमें तो हमें कोई मर्द की गवाही नहीं तो कैसे मानी जाए, या मर्द की गवाही यहाँ पे कोई मोतबिर है ही नहीं ऐसे मामलात में, तो मर्द भी कहें लो अब हमारी तो यहाँ पे गवाही नहीं मानी जाती, यहाँ पे हमारी गवाही कबूल ही नहीं की जाती, तो हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझा गया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये जो लोग इस तरह के प्रोपोगंडास करके लोगों को मुतनफिर करना चाहते हैं ना, तो ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, इस चीज की तहकीक करनी चाहिए। और जब आपको ये एतमाद हो ना कि मेरा अल्लाह किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला नहीं है, इसमें भी कोई हिकमत ही है, मेरे लिए कोई फायदा होगा, तो फिर इंसान को इत्मीनान रहता है। और जब औरतें इस चीज के ऊपर ईमान नहीं रखती तो वो फिर तड़पती रहती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हम तो बहुत मजलूम है, हमारे तो साथ तो जुल्म करता है इस्लाम। नाउज़ुबिल्लाह। वला तसअमु अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली, और ना तुम सुस्ती करो कि तुम लिखो इसको छोटा हो या बड़ा हो एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। यानी तुम लिखो चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, मामला छोटी अमाउंट का हो बड़ी अमाउंट का। देखिए सेकंड टाइम ये ताकीद आ रही है कि लिखो, लिखना जरूरी है, और इसमें इसको अपने आप पे बोझ ना समझो, और बल्कि स्पेसिफिक डेट के साथ लिखो, अजल के साथ लिखो ये कौन सी डेट तक का है। कोई ये ना कहे कि हाँ भाई इसकी क्या जरूरत है लिखत पढ़त की, ये तो छोटी रकम है, अब इसको क्या लिखवाना। ठीक है, लेकिन जब इंसान लिखता है ना तो उसको अजर भी मिलेगा, और अजर किस बात का मिलेगा कि अल्लाह के हुक्म के को उसने इम्प्लीमेंट किया। वालेकुम अक्सतु इंदल्लाह, ये बात ज्यादा इंसाफ वाली अल्लाह के हम अल्लाह के नजदीक ये बात में इंसाफ है। इस लिखने का फायदा क्या है, इस तहरीर की हिकमत क्या है, दिस इज मोर जस्ट जस्ट है, क्योंकि कर्ज देने और लेने वाले के लिए इसमें अगर कोई बात भूल जाती है, कोई चीज हो जाती है, तो इंसाफ क्या होगा कि उसमें से जो भी लिखा हुआ उसमें से देख ले। वह अकवामुल शहादा, और ज्यादा दुरुस्त करने वाली है शहादत को, शहादत की अदायगी में ज्यादा कायम रहने रखने वाली है शहादत को, यानी अदल और इंसाफ के तकाजे इससे बेहतर तौर पे पूरे होते हैं। ये हुक्म पूरे अदल वाला है, गवाही को भी साबित रखने वाला है, क्योंकि जाहिर है अगर कोई भी कहीं भूल चूक किसी से भी हो रही होगी ना, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन देख के भूली हुई बात उसको याद आ जाएगी, वरना गवाही को भी हो सकता है कहीं भूल जाए। और कई दफा ऐसे भी होता है ना, जो आगे बात भी आ रही है, वह अदना अल्लाह तकाबू, और ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो। कई दफा ऐसे होता है इंसान को लगता है कि अच्छा उसने ये बात कही थी और समझी आपने कुछ और बात, लेकिन जब डॉक्यूमेंट हो जाता है ना तो फिर यानी बिल्कुल क्लियर हो जाती बात। तो ज्यादा गवाही को भी कायम रखने वाली ज्यादा चीज कौन सी है, किताबत। ये नहीं कि बस गवाह बना ली है, किताबत की क्या जरूरत है, बस तुमने देख लिया ना हमने ये किया, नहीं, महज गवाही पे भी आप सिर्फ उसको इनाफ नहीं समझ सकते, और सिर्फ लिखने को भी नहीं इनाफ समझ सकते। कि जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने पे कोई इतराज कर सकता है, भी खुद ही लिख के इन्होंने घर में रख लिया होगा, और गवाहियां भी जो है ना वो क्या पता कि कोई भूल जाए। तो बस पहले डॉक्यूमेंट लिखा जाए, अब देखते हैं आप नीचे विटनेसेस के सिग्नेचर लिखे होते हैं तो फिर वो वहां पे सिग्नेचर करते हैं, तो इससे किसी को भी नहीं शक होगा। देखिए इस्लाम कितना चाहता है कि हारमनी हो, लोगों के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, लोग आपस में दुश्मनियां ना रखे। तो यहां तक तर ताबू तक आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, यहां तक कर्ज का मामला अब खत्म हो गया। अब आगे क्या है मामला, अब आगे मामला है, ये अगली जो लाइन है इसके अंदर मामला है, जब आप जिसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं वो करते हैं, इल्ला सिवाय, ये सारी बातें आपको करने की जरूरत नहीं है। कौन सी बातें, ये लिखने की, ये गवाह रखने की, ये जितनी भी बातें हुई है ना तताबू तक शुरू से लेके अब तक, एक बात क्या हुई थी, एक अजले मुसम्मा तक लिखो, नंबर टू फक्तुबू हो, नंबर थ्री वस्तशिदू गवाह बना लिया करो, उसके बाद गवाहों की पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद जालिकुम से क्या है या वाला तसअमु से क्या है, इस चीज को आगे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया कि छोटा और बड़ा भी कर्ज लिखो, और जालिकुम से क्या है, जितनी हिकमतें हैं इसके अंदर वो बता दी। अब ये सब चीजों की ना गवाह बनाने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना कोई स्पेसिफिक डेट मुकर्रर करने की जरूरत है। किस सिचुएशन में, एक्सेप्शन कब है इसकी, इल्ला अन तकुना तिजारतन हाजिरतन, जब हाजिर तिजारत हो। हाजिर तिजारत का मतलब क्या, जैसे आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए और चीज ले ली, अब जरूरत नहीं है कि लिखें और आप गवाह बनाएं और आप ये करें, तब नहीं जरूरत। हाँ अगर लिख लेते हैं ना तब तब भी ठीक है, लेकिन लाजिम नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं दुकान पे, तो देखें यहाँ पे तो खास तौर पे जो भी डीलिंग होती है फौरन वो आपको रसीद देते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपने $20 दिए, उन्होंने आपको 15 वापस लौटा दिए और 5 रख लिए ना, सारा लिखा होता है आपने ये चीज खरीदी, इतने की ये थी, इतने की ये थी, इतने की ये थी, पर पाउंड इतनी थी और आपने इतने पाउंड लिए, सब लिखा ना। तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप रिटर्न कराने जाते हैं तो रिटर्न पॉलिसी में उनको फिर ये रसीद दिखाते हैं तो हेल्प हो जाती है। तो अगर लेकिन नहीं भी करते, अब अल्लाह ताला ने इसमें इंसान को सहूलत दी, क्योंकि देखें अगर हर वक्त ये होता, कोई जरा सी माचिस भी लेने जा रहा है, मिर्च लेने जा रहा है, नमक लेने जा रहा है, हर वक्त उसको लिखाई करनी पड़ी, तो पहले जमाने में तो नहीं ना ये कैश रजिस्टर होते थे कि रसीदें फौरन प्रिंट होके निकल रही, तो अगर लिखना पड़ता सौदा तो वो तो दुकानदार तो बैठा सारा दिन यही करता रहता, तो कितनी मुशक्कत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इससे इंसानों को बचाया कि अगर हैंड टू हैंड इस तरह से हो रही है कोई पेमेंट, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। दुदी रूनहा बहिना को, तुम लेन देन करते हो आपस में, जो हाजिर तिजारत का लेन देन आपस में करते हो ना, फिर उसके अंदर कोई लिखने की जरूरत नहीं। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, तो नहीं है तुम पे कोई गुनाह कि तुम ना लिखो इसको। समझ आ गई बात? अन तकूना से क्या पता चल रहा है? इल्ला के बाद, कि जब ये सिचुएशन हो। कौन सी सिचुएशन? अन तकूना तिजारतन हाजिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, जब हाजिर तिजारत हो, जो तुम लेन देन करते हो आपस में, तो क्या करो? फलैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पे, अल्लाह तक तो हुआ कि तुम ना लिखो इसको, कोई हर्ज नहीं, ना लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है, ताकि तुम एक मुश्किल में ना पड़ जाओ। अब इसी तरह बाज ट्रांजेक्शन ऐसे होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी दोस्त ने कहा, और देखे $10 जरा मुझे देना, मैं ये मेरे कम हो गए हैं पैसे, मैं जरा इसको दे दूं, मैं बाद में तुम्हें देती हूँ, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। वाई? इसलिए कि इसमें कोई अजल नहीं है ना मुकर्रर, ठीक है, ऐसा लेन देन तो चलता रहता है। वह अशहीदू इदा तबायातुम, गवाह बना लो जब तुम बाहम खरीदो फरोख करो, जब बै करो, तिजारती मामलात हो, बड़ी कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो उसमें तुम गवाह बना लिया करो। यानी कि ऐसा सौदा, एक तो छोटा मोटा सौदा खरीदना है ना, जैसे अभी हमने बात की, मगर एक होती है कोई बड़ी ट्रांजेक्शन, कोई बै, तो वो जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो उसमें जरूर गवाह बना लिया करो, ठीक है। हालांकि ये हाजिर सौदा है, फिर भी गवाह बनाना इसमें अच्छा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, और उसके बाद गवाह भी बनाए जाते हैं, और फिर इसी तरह दो कंट्रीज के दरमियान भी जब मुआहदा होता है, तो इसी तरह फिर वो सिग्नेचर कर रहे होते हैं ना, विटनेसेस जो होते हैं, इस तरह आप घर वगैरह लेते हैं तो फिर भी करते हैं। वला युदारा कातिब वला शहीद, और याद रखो ना जरर पहुंचाया जाए कातिब को, लिखने वाले को, और ना गवाह। कैसे जरर पहुंचाया जाता है कातिब को? कातिब को कैसे जरर पहुंचाया जाएगा? मसलन उसको प्रेशराइज किया जाए कि तुम ये लिख लो, उसके ऊपर कोई धूस जमाई जाए। इसी तरह गवाह को कैसे प्रेशर किया जाता है, जरर पहुंचाया जाता है? तो आप देखे थे गवाहों को तो जान से ही मार देते हैं कई लोग, और उनको पता चल गया हमारे खिलाफ गवाही देने जा रहा है, इसीलिए तो लोग डरते हैं कि हम क्यों जो है ना गवाह बने। आपने देखा हमारे मुल्कों में कोई गवाह नहीं बनना चाहता, उनको तो फौरन धमकियां मिलनी शुरू हो जाती, थ्रेट्स आने लगती है। इसके अलावा भी देखें, जो इतना सताया जाता है उनको गवाहों को, कि साल के तौर पे सारा सारा दिन बुला के बिठा देते हैं, वो काम अपना कारोबार छोड़ के आए हैं, अब उनके अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, थानों के चक्कर लगवा रहे हैं, फिर पुलिस उनको तंग कर रही है, फिर अब वो किराया अपना लगा के भी आ रहे हैं, फिर अपनी काम भी छोड़ के आ रहे हैं, उनका कितना हर्ज होता है। तो जब कोई गवाह आए उसको तकलीफ नहीं देनी, यानी अब उसकी जो, और कातिब को भी, कातिब के लिए भी है, दोनों के लिए, इसलिए कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसका, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो इस्लामिक स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दो लोगों को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इतना अच्छा निजाम हो जाए ना, देखिए, क्योंकि अगर गवाहों को लोग मार दें या उनको थ्रेट्स आने लगे, वो ही डर जाए, तो देखो इसीलिए तो हमारे यहाँ आधे केस तो सॉल्व ही नहीं होते, गवाह आते ही नहीं, उनको इतनी थ्रेट्स आ रही है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है, अब कोई पढ़े इसको तो पता चले ना कि यहाँ पे क्या हुक्म है। कितना इंसाफ हो जाए हमारे मुल्कों के अंदर अगर इन अहकामात को फॉलो किया जाए। हम कहते तो बड़ी खुशी से कुरान में हर चीज का हल है, वो हर हल है तो तुम उसकी तरफ जाओ भी तो सही, कभी इसको उठा के देखो भी तो सही है। फिर अगर इतने ही तुम कॉन्फिडेंट हो कि कुरान में हर चीज का हल है तो फिर आओ इसकी तरफ। बस हल तो है लेकिन हम अपने मसले कुरान से हल नहीं कराना चाहते, यही होता है ना, इसीलिए तो हम नहीं आते इसकी तरफ, ना सीखना चाहते ना समझना चाहते ना देखना चाहते इसको, लेकिन फखर से बताते फिरते इसमें हल हर चीज का। किसी को पता चल जाए उसके प्रॉब्लम का सलूशन कहीं मिल रहा है तो चाहे उसको फ्लाई करके वहां पहुंचना पड़े, वहां पे जाता है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ, वो किसी किस्म का भी प्रॉब्लम। लेकिन क्या बात है कि हम कहते हैं कि कुरान में हर मसले का हल है और उसके बाद इसकी तरफ नहीं आते, या तुम्हारी बात झूठी है। तो कुरान तो हम तो हमें ईमान है कि कुरान तो नहीं झूठ, हमारी बात झूठी है क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, फिर हमें इसका यकीन नहीं, हम मुंह से बोलते हैं बस। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब तकलीफ किस चीज से पहुंच सकती है, अब देखें गवाह को एक ये भी तकलीफ हो सकती है कि भाई वो पैसे स्पेंड करके आता है, किराया उसका लगता है, उसका टाइम जाया होता है, तो उसको उसके जो एक्सपेंस है उसका, जिसको जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक्सपेंस, जो उसके आने का, उसके खाने पीने का, वहां पे स्टे करने का, वो सारा एक्सपेंस पे किया जाए। इसी तरह अगर वो अपना काम छोड़ के आया है, अपना टाइम दे रहा है, तो उसका उसको पेमेंट की जाए, उसको डराया धमकाया ना जाए, उसको किसी तरह का प्रेशर ना हो। इसी तरह जो कातिब है वो भी, उसको भी कोई ऐसी प्रेशर में आके तंग करके कोई चीज नहीं लिखवा लेनी चाहिए। और इसका दूसरा भी मतलब है, ला युदारा एक है ना, ना जरर पहुंचाया जाए इनको, और ये मजबूर मारूफ भी है वो ना जरर पहुंचाए, ये कातिब और शहीद भी ना किसी को जरर पहुंचाए। ये कैसे पहुंचा सकते हैं जरर, कातिब अदल से ही ना लिखे तो उसने जरर पहुंचाया है ना, और शहीद भी कैसे जरर पहुंचा सकता है। तो कोई गवाही है उसको छुपा लिया, कोई बात है उसको हक के खिलाफ कह दी, तो ये हमेशा हमेशा के लिए देखें क़यामत तक के लिए कुरान ने कितनी प्यारी इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब हम मुसलमान हैं, हम ही इसको फॉलो ना करें तो कौन फॉलो करेगा, हमने तो इसको बिल्कुल वो बना दिया कि नहीं ये तो बस सवाब कमाने की चीज है। कितनी दफा हम इन आयतों से गुजरे होंगे, कभी किसी को पता था कि ये गवाहों के लिए भी ये लिखा हुआ कुरान ने, इनको ना सताया जाए ना ये कोई इनका, इसी तरह ये भी इनको सताना हो गया ना कि इनका मुआवजा दबा लिया जाए, ये अब दे ही नहीं रहे पैसे इनको। वह इन तफालू फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, अगर तुम करोगे ये, क्या करोगे क्या करोगे, ये जो पीछे बात आ रही है यानी कातिब या गवाह को तुम तकलीफ पहुंचाओगे या फिर कातिब और गवाह किसी को तकलीफ पहुंचाए, तो क्या है ये, कोई छोटी बात नहीं है। फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, बेशक वो गुनाह होगा तुम्हारे लिए, ये नाफरमानी है। क्या और बी आ गया, देखिए फुसूकुम बिकुम, फिस्क के बाद बा, अक्सर ऐसे नहीं आता, ये गुनाह होगा साथ तुम्हारे, यानी ये चिमट जाएगा तुम्हें, ऐसा गुनाह है ये, इतना गुनाह है बड़ा जो चिमट जाएगा पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को खराब कर दे। तो जो बातें तुम्हें समझाई जा रही इनके खिलाफ ना करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, डर जाओ अल्लाह से, ये काम मत करो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है, ये बातें तुम्हें किसी और ने सिखाई, ये अल्लाह तुम्हें खुद सिखाता है। देखिए एक बात आपने नोट की, कितनी तवील आयत है और एक एक चीज इसमें डिस्क्राइब की गई है। नमाज के बारे में फरमा दिया गया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, और हमारे नबी ने हमें सिखाई कि किस तरह पढ़नी है। रोजे कह दिया गया रोजे रखो, कैसे रखने ये हमारे नबी से हम सीख लेंगे। हज अदा करो, ये कहा गया सिर्फ, हज का तरीका क्या है ये अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लेंगे। लेकिन कर्ज का मामला ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है वायुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुद तालीम दे रहा है, इसकी खुद अल्लाह ताला सिखा रहा है। इससे पता चला कि दीन के जो मामलात हैं उनको पूरी तरह अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है। जो चीज अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने मैंने सिखाई है, तो क्या उसकी अहमियत नहीं समझते आप कितनी होनी चाहिए। और तकवा तकवा तकवा, इसलिए कि ठीक है कानून बना देते हैं आप, कानून का खौफ भी एक होता है, मगर खुद सोचें कानून आपके साथ 24/7 तो नहीं ना चिमटा रह सकता। एक हद तक आपको पुलिस का भी खौफ होगा, ये ना पकड़ ले फला, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन वो 24/7 मिनट मिनट तो किसी के साथ नहीं रह सकते ना। हर हर बंदे के साथ तो एक गार्ड नहीं वो खड़ा कर सकते कि भाई सीधे चलना है तुमने, ये नहीं बेईमानी करनी तुमने, ऐसे नहीं करना। एक हद तक ही कानून जाहिर है इंसानों के बनाए हैं, वो एक हद तक ही किसी को पकड़ भी सकते हैं या एक हद तक किसी को वॉच भी कर सकते। उसके बाद क्या है, ये तकवा है जो इंसान को सीधा रखता है। तकवा जब इंसान के अंदर होगा ना, तो वो हर हाल में, चाहे पुलिस सामने है या नहीं, चाहे हुकूमत है या नहीं, चाहे गार्ड है या नहीं, कोई भी नहीं हो, अल्लाह का डर उसके लिए काफी है कि वो सीधा रहे। अल्लाह का डर तो है नहीं, पुलिस का याद रखा हुआ, अल्लाह भी कुल्ली शैन अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला, उसने जो कानून तुम्हें दिया है ना वो अपने इल्म की बेसिस पे दिया है। देखें जिसके पास आधा इल्म हो ना, आप उससे राय नहीं लेते। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मतलब किसी कोई डॉक्टर नहीं और आम आदमी है, तो आप उससे ना आके जाके अपना इलाज नहीं करवाना शुरू करते। तो आप कहते हैं इसके पास इल्म ही नहीं, ये मुझे सही कहाँ बात बताएगा। किसी डॉक्टर के पास जाके आप कोई कानून के नुक्ते नहीं पूछते, आप कहते हैं इसके पास कहाँ इल्म, ये मुझे सही गाइड नहीं कर सकता। गाइड आपको सही कौन कर सकता है, किसके पास आप जाते हैं। आपको कोई हार्ट की डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पैर के डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे। आपको पता है कि दिल का डॉक्टर ही मुझे सही बात बता सकता है, इसके पास इल्म है, तो आप ट्रस्ट किसको करते हैं, जिसके पास उस चीज का इल्म होता है। और अल्लाह कौन है जो बिकुल्ली शैन अलीम है, हर चीज का इल्म रखने वाला है, और हम उसकी बात को छोड़ के और हम दूसरी चीजों के पास जाएं कि वहां से मैं इल्म ले लूं और ये मुझे बता दे कि कैसे चलना चाहिए, वो मुझे बता दे, वो कैसे बता सकते हैं, उनके पास तो हर चीज का इल्म नहीं है। कोई दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता, कितना ही किसी को आप इतना बड़ा समझे, कोई दुनिया में ये कह सकता है। वो जो खुदा बने बैठे हैं नाउज़ बिल्ला, जो खुद अपने आप को खुदा कहते हैं, वो भी नहीं ये कह सकते कि हमें बिकुल्ली शैन अलीम है, हम वो भी नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा, जो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वल्लाहु बिकुल्ली शैन अलीम। अल्लाह ताला हमें ये आयात सीखने की, समझने की, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अंदर तकवा पैदा फरमा दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.